मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत मैं आज आप सबसे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले एक घटना पर चर्चा करना चाहूंगा जो यूक्रेन से जुड़ी हुई है और अखबारों में इस पर काफी कुछ लिखा भी गया है, चैनल्स पर भी आपने इसे देखा और सुना होगा। अभी तक मैंने यूक्रेन पर जो बातें आपसे की उनकी पृष्ठभूमि में अब आप इसे जानने और समझने की कोशिश कीजिए। कल मैंने आपसे बताया था कि यूक्रेन के जो दो क्षेत्र हैं, जो दो इलाके हैं, उसे रूस ने बिल्कुल आजाद देश घोषित कर दिया है और स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि उसने आजाद देश घोषित किया है, दोनों के बीच एक रक्षा समझौता भी हो गया, उन दोनों देशों के बीच और रशिया के बीच रक्षा समझौता भी हो गया है, तो इसलिए अब इन दोनों प्रांतों में रूसी सेनाएं हमेशा हमेशा के लिए तैनात कर दी गई हैं। अब आप देखिए कि वहां जब रूस की सेना हमेशा के लिए तैनात हो गई तो एक तरीके से रूस को प्रोटेक्शन मिल गया, या कह लीजिए कि एक आर्मी वाल उसने खड़ी कर दी। डेफिनेटली अब आप देखिए कि रशिया ने किया क्या है। रशिया एक स्वतंत्र देश है और यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है। अब यह बात अलग है कि यूक्रेन कभी रशिया का हिस्सा था, तो इसीलिए रशिया कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर अपना अधिकार समझता है। देखिए, इसीलिए तो कह रहा है कि नहीं, तुम नाटो में शामिल नहीं हो गए, अदरवाइज भैया यूक्रेन अब स्वतंत्र देश है, अब अपने ढंग से निर्णय लेने की उसे आजादी है कि वो शामिल हो या ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पिछला जो लिंक है रूस, वैसा महसूस करता है यूक्रेन के साथ, इसीलिए वह यूक्रेन पर यह दबाव डाल रहा है और अब लोगों को आशंका हो रही है कि वो कहीं यूक्रेन पर अटैक न कर दे। अब चूंकि पूरी दुनिया एक हो गई है, हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसा संस्थान भी है, तो खासकर इस आशंका को देखते हुए अभी जो रूस ने किया है और यूक्रेन के दो क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, इसकी निंदा की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी निंदा की, और देखिए नियम के तहत तो इसकी निंदा बिल्कुल सही भी है कि आप कौन होते हैं दूसरे देश के किसी हिस्से को स्वतंत्र घोषित करने वाले, तो वहां बिल्कुल सही है। अमेरिका ने बकायदे कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं रशिया के ऊपर। अब देखिए होना शुरू हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वो होनी शुरू हो गई। जर्मनी ने बकायदे जो रूसी गैस पाइपलाइन का काम चल रहा था जर्मन और रूस के बीच में, मैंने आपको कल या परसों बताया था, आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जर्मन और फ्रांस में जो गैस की सप्लाई होती है वो सबसे ज्यादा रूस से ही होती है, उस पाइपलाइन का काम रोक दिया गया। इसका मतलब है कि अब जर्मनी, फ्रांस या यूरोप के देशों में गैस का संकट पैदा होगा। और जब जैसे ही यह हुआ तो फिर आपको एक और घटना देखिए इससे जुड़ी हुई है, वो ये हुआ कि कच्चे तेल के दाम 4.31% बढ़ गए। एक दिन में कीमत का इतना बढ़ जाना बहुत मायने रखता है और अब तक के 7 साल के साथ सबसे उच्चतम स्तर $99.50 पर बैरल हो गया। तेल की कीमतें बढ़ गई क्योंकि जो रशिया है वह तेल का बहुत बड़ा निर्यातक है और साथ ही साथ रशिया गेहूं का भी बहुत बड़ा निर्यातक है। तो अब यह भी आशंका आप कर सकते हैं कि विश्व बाजार में हो सकता है कि गेहूं की कीमतें भी बढ़ जाएं। तो दोस्तों, हम यहां तक आ चुके हैं। अब बकायदे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उसकी बैठक बुलाई गई है। देखिए उस बैठक में क्या निर्णय होता है, लेकिन आप जानते हैं कि 5 देशों के पास वीटो पावर है और उन 5 देशों में एक रशिया भी है। तो रशिया के खिलाफ जब कोई भी प्रस्ताव पारित करने की बात आएगी तो सीधी सी बात है कि रशिया उसे वीटो कर देगा। चीन क्या करेगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि चीन और भारत ने अभी अपनी तटस्थता बनाई हुई है। उन्होंने केवल यह कहा है कि इसका समाधान शांतिपूर्वक कर लिया जाना चाहिए, आपसी बातचीत के जरिए होना चाहिए। आप यूं कह लीजिए कि भारत और चीन एक तरीके से तटस्थ बने हुए हैं। आप जानते हैं कि भारत भी सुरक्षा परिषद का भी अस्थायी सदस्य है। देखते हैं कि अब इस आपात बैठक में, जो सुरक्षा परिषद की बैठक है, याद रखिए यह यूएनओ की बैठक नहीं है, यह यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है। जब भी दुनिया में कुछ इस तरह के सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े होते हैं तो उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षा परिषद को ही होता है, यूएनओ को नहीं होता है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसीलिए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। तो दोस्तों, यह इसका अपडेट है। आप देख रहे हैं कि भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। लगभग 20,000 जो हमारे छात्र और नागरिक हैं वो यूक्रेन में रह रहे हैं। अगर निकालने की नौबत आई तो 20,000 व्यक्तियों को निकाल पाना इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कर दी गई है खासकर भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए। मुख्य विषय के तहत फ्रेंड्स अब मैं आ रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, मूल कर्तव्य। सुनकर के आप थोड़ा सा चौंके होंगे कि मूल कर्तव्य को आज इसके अंतर्गत लेने की क्या जरूरत थी। ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, आप रेगुलर तरीके से उसे पढ़ लेंगे। सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान थोड़ी सी आपको इस तरह की सतर्कता बरतनी ही चाहिए, और मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो गाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो डेफिनेटली जब भी कोई ऐसा अवसर आता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को प्रधानता देनी है, उस पर जोर देना है, तो आपके ध्यान में लाएं। अभी अभी एक घटना हुई है, और घटना ये हुई है कि PIL दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, और इसके बदले में केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। वो जो जनहित याचिका है वो क्या है? जनहित याचिका में यह कहा गया है कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो संविधान में शामिल किए गए हैं, उन्हें भी कानूनन स्वरूप दिया जाए। यानी कि अगर कोई नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो बकायदे कानूनन उसका पालन कराया जाए। आप जानते हैं कि हमारे यहां जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो मूल कर्तव्य, इनके पास न्यायिक संरक्षण नहीं है। ये कोई सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा थोपे गए नीति नहीं है, या कह लीजिए कर्तव्य नहीं, कि नहीं नहीं आपको इसका पालन करना ही होगा, अपेक्षा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आप एक तरीके से राज्यों के लिए निर्धारित किए गए कर्तव्य हैं, आप कह सकते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ठीक है, कोई नागरिक इसके लिए बाकायदे न्यायालय में नहीं जा सकता। मूल कर्तव्यों के साथ भी यही है। तो दोस्तों, अब ये जनहित याचिका चूंकि स्वीकार कर ली गई है, तो स्वाभाविक रूप से जो मूल कर्तव्य का टॉपिक है कमिंग ईयर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या मेंस। और आप मान करके चलिए कि मार्च तक की जो घटनाएं होंगी, उन घटनाओं से प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है, एग्जामिनेशन के एटलीस्ट 2 महीने पहले तक की घटनाएं। तो पहली बात कि जो मूल कर्तव्य का जो टॉपिक है उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब मैं पकड़ की बात कह रहा हूं तो सीधी सी बात है कि शुरू में संविधान जब बना उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, तो मूल कर्तव्य क्यों लाया गया, कब लाया गया, किस संविधान संशोधन के जरिए लाया गया, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में उसमें फिर एजुकेशन से संबंधित एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, वो बाद में 2002 में जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, जब इमरजेंसी का पीरियड था, आपातकाल का दौर था। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत क्लियर। और किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है, उस अनुच्छेद का नंबर क्या है, अनुच्छेद 51। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, और थोड़ी सी बारीक तरीके से तैयारी होनी चाहिए। इसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने बकायदे आज एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, वो एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे देखेंगे, और यदि संभव हो सका तो इसका जो हिंदी वर्जन है वह भी उपलब्ध कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसमें जो प्रश्न उठाया गया है, अब मुख्य परीक्षा पर मैं आ रहा हूं, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न उठाया गया है, 2-3 प्रश्न उठाए गए हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अपने आप में दुनिया भर से ओवरबर्डेंड है, उसके पास इतने सारे PIL के केस है जो फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं, कि ऑलरेडी ओवरबर्डेंड है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बोझ है, दबाव है। तो इसमें यह कहा गया है कि बेकार के ये ड्यूटीज वाले मामले को स्वीकार करके उसने अपने ऊपर एक और बोझ तैयार कर लिया, या कह लीजिए कि एक और नया रास्ता खोल लिया, क्योंकि ड्यूटीज को लेकर के तो फिर अगर एक स्वीकार कर लिया गया है तो और ढेर सारी इस तरह की याचिकाएं आती रहेंगी। और फिर दूसरी बात कही गई कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है, तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को कानून के रूप में किसी लागू कराने की जरूरत पड़ती भी है तो यह काम संसद का है, संसद पर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी आखिरी में जाकर के इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनके पालन के लिए ऑलरेडी कानून बनाए गए हैं कि आपको इनका पालन करना है, तो ऑलरेडी हैं और अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो ठीक है, फिर उसके लिए कानून बना दिया जाएगा और वो पॉलिटिशियंस करेंगे, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, या यूं कह लीजिए कि हमारा पार्लियामेंट करेगा। तो इस पर कोई भी एक्शन कम से कम सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए था। और हमारे यहाँ जो तीन बिल्कुल अलग अलग विंग बनाए गए हैं, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के, उनकी जो शुद्धता है, उनमें जो संतुलन है, उसे बना रहने देना चाहिए था। ये बात खासकर इस एडिटोरियल कमेंट में कही गई है और मुझे लगता है कि बहुत सही तरीके से ही कही गई है, क्योंकि इसकी जरूरत भी है, नहीं तो चीजें इतनी गड्ढमगड्ढ हो जाएंगी और आप होती हुई देख रहे हैं। आप देखिए कि कोई भी छोटा सा मामला होता है, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का आधार बना करके, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करके अपना निर्णय देने पड़ते हैं, और पता लगा कि वो निर्णय कुछ इस तरीके के हैं कि वो निर्णय किसी प्रशासक को देने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि प्रशासक भी धीरे धीरे कोई भी निर्णय लेने से हिचकने लगे हैं, क्योंकि मालूम है कि वो कोई निर्णय लेंगे, उस निर्णय के विरोध में लोग कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट उस पर स्टे दे देगी, जवाब तलबी शुरू हो जाएगी, और फिर अंततः होगा वही जो कोर्ट निर्णय देती है। आपको क्या आश्चर्य नहीं होता है कि कहाँ हड़ताल की जानी चाहिए, कहाँ किसान बैठे कि नहीं बैठे, पुलिस क्या एक्शन ले, कचरा उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, पर्यावरण के लिए क्या किया जाए, इस तरह के डिसीजंस भी सुप्रीम कोर्ट को देने पड़ रहे हैं, हाई कोर्ट को देने पड़ रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो अक्सर इस तरह का प्रश्न भी आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में बकायदे मेंस में पूछे गए हैं न्यायिक सक्रियता को लेकर। तब सीधी सी बात है कि अगर मेंस में न्यायिक सक्रियता पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके तहत ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज को पीआईएल में जो एक्सेप्ट किया गया है उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करना आप यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अनिवार्य नहीं था, खासकर इसमें जो एडिटोरियल कमेंट में जो बात कही गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि चूंकि फंडामेंटल ड्यूटीज पर तो ऑलरेडी काफी कुछ लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से किताबों में मिलता है, तो उसे आप बहुत ध्यान से देखें और इस बार के प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर निश्चित तौर पर एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों इतना ही। ऑफलाइन की हमारी जो क्लासेज हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं, और इसके लिए राजपाल जो चेन्नई तमिलनाडु से हैं उन्होंने एडमिशन लिया है, तो राजपाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं वीरेंद्र सिगरिया और हिमांशु सिंह जायस अमेठी उत्तर प्रदेश से, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।